ओम शांति। आज के इस सुंदर उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चंद पंक्तियां किसी ने बहुत खूबसूरत कही हैं कि हथेली पर सूरज उग आता है, सुना था आज देख लिया, उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, आज देख लिया। आप यहाँ पधारे, हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो, अच्छे लोग कैसे एक मंच पर मिल जाते हैं, आज देख लिया। तो इतने सारे अच्छे लोग आज इस सभा में एकत्रित हैं, ऐसे लोग, ऐसे महानुभाव जो न स्वयं जल पे चलते हैं बल्कि औरों को भी चलाते हैं, ऐसे महानुभाव जो न केवल खुद हवा में उड़ते हैं बल्कि औरों को भी उड़ाते हैं, और कुछ ऐसे महानुभाव जो न केवल सुंदर स्थानों पर रहते हैं बल्कि औरों को भी सुंदर स्थानों पर पहुंचने के लिए, एक ऐसे सुंदर स्थान जो दर्शनीय हो वहां पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसी त्रिमूर्ति क्षेत्र से जुड़े हुए आज भाई बहने हमारे इस सभा में उपस्थित हैं, त्रिमूर्ति परमात्मा के इस सुंदर सदन में। ये खास करके जानने के लिए कि बाहर की यात्राएं तो हम करते ही रहते हैं लेकिन भीतर की यात्रा भी हम करके देखें। जैसे बाहर यात्रा करके हम आनंद का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ दर्शनीय स्थल हमारे अंदर भी हैं जहां पहुंचकर हम अनंत आनंद, सुकून और शांति का अनुभव करते हैं। और यही इस सेमिनार का विशेष करके ध्येय है कि बाहर की यात्राएं तो हमने बहुत की हैं, क्यों ना अब अंतर की यात्रा की ओर भी हम चलें, क्योंकि जीवन का एक खास ध्येय यही होता है कि कैसे हम तनाव से मुक्त रहकर जीवन का संपूर्ण आनंद लें, कैसे हम सफलता को अर्जित करें, कैसे हमारे चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान खेलती रहे। और इन्हीं रहस्यों से आज पर्दा उठेगा आज के हमारे इस उद्घाटन सत्र में, और साथ ही आने वाले 2-3 दिनों में जब तक आप यहां हैं। तो इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आज के इस उद्घाटन सत्र के जो हमारे महानुभाव हैं उन्हें अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आदरणीय बीके मीरा दीदी जी और आप करतल ध्वनि से उन सबका अभिनंदन करेंगे। आदरणीय मीरा दीदी को आमंत्रित करूंगा, वाइस चेयरपर्सन सैटविंग श्री शंकर नारायण स्वामी जी, वो भी मंच की शोभा बढ़ाएंगे। श्री जी के चौकियाल जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें। डॉक्टर प्रताप मिधा जी, ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी, बीके कमलेश बहन जी और ब्रह्मा कुमार रविंद्र भाई जी हमारे अतिथि मंच पर पधार रहे हैं। आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि आज का ये अवसर बड़ा ही निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार आप जोरदार तालियां तो जरूर बजाएं क्योंकि कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। मैं अपनी बहनों से अब अनुरोध करूंगा कि मंचस्थ हमारे मेहमान कहूं, आदरणीय कहूं, महानुभाव कहूं, उन सबका पुष्प गुच्छों से और साथ ही बैजेस से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारी बहनें और हम सब अपना सहयोग स्वागत में तालियों के साथ अवश्य प्रदान करेंगे। ये स्वागत केवल मंचस्थ महानुभावों का नहीं है लेकिन हम सब का है, क्योंकि आप पधारे हैं यहाँ, हमारा ये सौभाग्य है। आप पधारे हैं यहाँ, ये हमारा सौभाग्य है। शुक्रिया करता हूँ आपका। आज शनिवार है, दिल से आप सबका स्वागत बारंबार है, बारंबार है, बारंबार है। सचमुच हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आप सब दूर दराज से यहाँ पे पधारे हैं। हम एक परिवार के हैं और ये परिवार की भावना आप पिछले एक दिन से जरूर कर रहे होंगे कि आप ईश्वरीय परिवार में पहुंच चुके हैं। तो एक बार पुनः करतल ध्वनि से सबका स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत की इस श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मधुर वाणी ग्रुप को। आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हमारी ये जो मधुर वाणी ग्रुप के भाई हैं, ये यही वर्षों से समर्पित हैं और इन्हें ये ईश्वरीय देन है कि ये स्वयं ही गीत लिखते हैं, स्वयं ही उसे कंपोज करते हैं। और हर ग्रुप, जैसे आप आए हुए हैं लगातार यहाँ पूरे वर्ष नए नए ग्रुप आते हैं, उनके सम्मुख नए नए गीतों के माध्यम से स्वागत की प्रस्तुति देते हैं। तो मैं अब मधुरवाणी ग्रुप को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
ओम शांति। सभी कहें ओम शांति। पर्यटन हो, यातायात या हो चाहे कोई बात, आज की आवाज सब में आध्यात्मिकता चाहिए। आध्यात्मिक संसार में आइए प्रियाइए, आइए प्रियाइए। स्वागत है, एक बार जोरदार तालियों से अपना अभिनंदन करें।
पर्यटन हो यातायात या हो चाहे कोई बात, पर्यटन हो यातायात या हो चाहे कोई बात, आज की आवाज सब में आध्यात्मिकता चाहिए। आध्यात्मिक संसार में आइए फिर आइए, आध्यात्मिक संसार में आइए फिर आइए।
बहुत खुशी का अवसर है आपकी करतल ध्वनि आपके अपने लिए।
आध्यात्मिकता की परिभाषा हर चेहरा यहाँ सुना रहा, कर्मों के दर्पण से अपने नई दुनिया है दिखा रहा। आध्यात्मिकता की परिभाषा हर चेहरा यहाँ सुना रहा, कर्मों के दर्पण से अपने नई दुनिया है दिखा रहा। आत्मा के अध्ययन से आध्यात्मिकता लाइए, आध्यात्मिक संसार में आइए प्रिय आइए, आज की आवाज सब में आध्यात्मिकता चाहिए। आध्यात्मिक संसार में आइए प्रिय आइए, आध्यात्मिक संसार में आइए प्रिय आइए।
चलते रहे हम साथ साथ, यातायात पर्यटन है।
आध्यात्मिकता के माने घर बार का है संन्यास नहीं, याद की यात्रा करने में तो कर्म कांड की बात नहीं। परमपिता का प्यार है मिलता प्यारे प्रभु परिवार में, अपनों द्वारा अपनों का स्वागत अपने संसार में। बहुत दिनों के बाद मिले हैं दूर तनिक ना जाइए, आध्यात्मिक संसार में आइए प्रिय आइए, आज की आवाज सब में आध्यात्मिकता चाहिए, आध्यात्मिक संसार में आइए प्रिय आइए, आध्यात्मिक संसार में आइए प्रिय आइए, पर्यटन हो यातायात या हो चाहे कोई बात, पर्यटन हो यातायात या हो चाहे कोई बात, आज की आवाज सब में आध्यात्मिकता चाहिए, आध्यात्मिक संसार में आइए प्रिय आइए, आध्यात्मिक संसार में आइए प्रिय आइए, आध्यात्मिक संसार में आइए प्रिय आइए।
बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई जी, भानु भाई जी, हम एक बार जोरदार तालियों से इन्हें धन्यवाद अर्पित करेंगे। कितने सुंदर शब्दों में इन्होंने हमारा अभिनंदन किया है कि आज की आवाज सब में आध्यात्मिकता चाहिए और आध्यात्मिक संसार में आप सबका अभिनंदन है। ये परिवार है ईश्वरीय परिवार, आध्यात्मिक परिवार, जो हमारे जीवन को सुख शांति और सुकून से भरपूर कर देता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मधुरवाणी ग्रुप का। और स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी सरोजनी को, जो भोपाल से हमारे बीच पधारी हुई हैं और बहुत सुंदर गीत के बोल के साथ की नैनों से स्वागत, वो अपना नृत्य हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करेंगी। आमंत्रित करता हूं कुमारी सरोजनी को, जो भोपाल से हमारे बीच पधारी है।
Thank you.
शुक्रिया कुमारी सरोजनी दीदी भी हम सबकी तरफ से गुलदस्ता प्रदान कर रहे हैं। एक बार पुनः करतल ध्वनि से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कुमारी सरोजनी का, और साथ ही आदरणीय राजू भाई जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और बहनों से अनुरोध करूंगा कि भ्राता जी का स्वागत करें हम सबकी ओर से। भ्राता जी वाइस चेयरपर्सन है ग्राम विकास प्रभाग के, हम सब की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागत करते दिल नहीं भर रहा है, लगता है कि आप इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद इस परिसर में, अपने परिवार में, ईश्वरीय परिवार में पधारे हैं, तो हम बारंबार आपका स्वागत करें, बारंबार आपका अभिनंदन करें। और इसी कड़ी में अब वाणी से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय ब्रह्म कुमारी कमलेश बहन जी को, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं शिपिंग एविएशन और टूरिज्म विंग की, यूथ विंग की आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, महाराष्ट्र की सांता क्रूज ईस्ट की ब्रह्म कुमारी केंद्र की आप निदेशिका हैं, और परम सौभाग्य आपका कि बाल्यकाल से ही आप ईश्वरीय परिवार से, इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। मैं चंद पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगा आपके नाम के अनुरूप, क अर्थात कमल नयन पवित्रता की धनी, म मधुरता की अविरल धार हैं आप, ल लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, ईश्वर की जग को सौगात हैं आप, शक्ति स्वरूपा कमलेश हैं आप आदरणीय कमलेश बहन जी।
ओम शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा की अति स्नेही सम्माननीय मंच, हमारी राजयोगिनी परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारी दादी रतन मोहिनी जी, वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगी। साथ ही साथ राजयोगिनी आदरणीय मीरा बहन, हमारे बहुत स्नेही भ्राता राजयोगी डॉक्टर प्रताप भाई जी, आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी, रविंद्र भाई जी, एवं एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार से पधारे हुए हमारे शंकर नारायण स्वामी जी, हमारे भ्राता जीएल चौकियाल जी, सभा में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा का जिनके सजेशन से, जिनके आदेश से ये कार्यक्रम निर्मित हुआ, उनका स्वागत करते हुए मैं आप सभी का दिल से बहुत 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 अभिनंदन करती हूँ। इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वातावरण में, जहां इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आध्यात्मिकता आपको पत्ते पत्ते में दिखाई देती है, जैसे आप सुन भी रहे थे कि हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, और यही कारण है चारों तरफ आप प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ पर देखते हैं। ऐसे वातावरण के बीच इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसका विषय ही है द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। हम सभी जानते हैं कि आज ट्रैवल और टूरिज्म बहुत लोकप्रिय हो रहा है, और भारत में विशेष रूप से यदि आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो हमारा इनर टूरिज्म या इनर ट्रैवल है, उसमें मैक्सिमम ट्रैवलिंग जो होती है जो लोग करते हैं, और वो है स्पिरिचुअल टूरिज्म। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां कोई ऐसा स्थान नहीं होगा। छोटे छोटे शहरों में भी आप देखते हैं, गांवों में भी आप देखते हैं, कोई ऐसा मंदिर होगा जब बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। वर्ष में कभी मेला होता है कहीं पर, कैसे कहीं पर कैसे। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है भारत भर में बहुत प्रसिद्ध है, और उसके कारण मैक्सिमम लोग ट्रैवल करते हैं, और अदरवाइज भी हम देखते हैं कि ट्रैवल बहुत लोकप्रिय है। और हम सभी जानते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इसेंशियली एम्स एट रिक्रिएशन, रिलैक्सेशन एंड लेजर, यानी हमें मीन्स थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, और थोड़ा हमें आराम करने का एक हम सोचते हैं, थोड़ा रूटीन से हमें हटकर कुछ करेंगे। डेफिनेटली ये बात तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, ये विभिन्न संस्कृतियों को जानने का और उनको मिलाने का सुगम साधन है। नहीं केवल इतना, जो हमारे पुरातन शास्त्रों में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एकात्मता की भावना, उसको बढ़ाने का ये भी एक माध्यम है। मुझे याद है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जो स्विट्जरलैंड में थे, और जब उन्होंने अपने इकोनॉमिक फोरम में स्पीच दी, और उन्होंने यही बात कही कि क्योंकि भारत जो है उसकी संस्कृति बड़ी पुरानी है, भारत का इतिहास बहुत ऊंचा इतिहास है, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ऊंची है, और इसीलिए लोग उसको देखते हैं। तो उन्होंने कुछ एक बातें कही जो मुझे अभी याद आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप वेल्थ के साथ वेलनेस चाहिए तो आप भारत में आए, अगर आपको सक्सेस के साथ समृद्धि चाहिए, समग्रता चाहिए, तो आप भारत में आए। तो इसी प्रकार उनकी कुछ बातें थी, यानी भारत जो है शुरू से ही आध्यात्म प्रधान देश रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो टूर एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म है, जिसमें हम रिक्रिएशन या रिलैक्सेशन फील करते हैं, उसके साथ साथ अनेक प्रकार की आंतरिक भावनाएं हमारी जागृत करने का ये माध्यम है। सबसे बड़ी बात एक और है, ये हमारी विजन को विशाल करता है। कैसे? हम अपने कंफर्ट जोन, आज आप देखिए हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में है, उसकी अपनी मान्यताएं हैं, उनसे वो बाहर निकलना नहीं चाहता है, लेकिन हम ट्रैवल जब करते हैं उस कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं, एंड वी लर्न टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड वन एंड ऑल। हम दूसरे को स्वीकार करना, वो जैसा है उनको समझना, वो हमारी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर हम ये सब चीजें जो आज जीवन में बहुत जरूरी हैं, उनको हम बढ़ाना चाहते हैं, व्हाट डू वी रिक्वायर? नॉर्मली जब हम ट्रैवल के लिए जाते हैं, हम अपना समय फन मेकिंग और लेजर में ही बिता देते हैं, इधर उधर की बातों में बिता देते हैं, और हम जो मेन लेसन हमें टूरिज्म से मिलता है या ट्रैवल से मिलता है, उसको हम भूल जाते हैं। इसीलिए इट रिक्वायर्स ए जर्नी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जैसे अभी आपको भाई ने कहा था कि जिस प्रकार बाहर के दर्शनीय स्थल हैं, इसी प्रकार अंदर भी हमारे भीतर भी कई दर्शनीय स्थल हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, कुछ लोग मीटिंग के लिए, यंग पीपल थे, वो एक मीटिंग में बाहर जा रहे थे। सभी अपने अपने घर में कह के आए कि हम शाम को वापस आ जाएंगे, और आजकल तो ये बहुत कॉमन है, सुबह निकलते हैं, फ्लाई करते हैं, दूसरे स्थान पे जाते हैं, मीटिंग करके शाम को वापस घर आ जाते हैं। तो मीटिंग में थोड़ा डिले हो गया, वो बहुत एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे, पहले से ही कुछ देर हो चुकी थी, तो वो अपनी बोर्डिंग करने के लिए एयरपोर्ट पर भाग रहे थे। तो भागते भागते अचानक क्या हुआ, एक व्यक्ति की किसी से टक्कर हो गई, रास्ते में ही, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे ही नहीं थे, तो टक्कर हो गई। तो बाकी सब तो आगे चले गए, वो जो व्यक्ति कुछ सामान लेकर उसके हाथ में था, वो सारा सामान बिखर गया, और सामान बिखर गया, वो व्यक्ति भागते भागते गया, और जैसे ही थोड़ा सा आगे गया, उसको याद आया मैं किसी से टकराया था और उसका सामान सारा गिर गया था। वो एक बहुत पुअर फेलो, यंग बॉय था, जो कुछ चीजें बेच रहा था और आंख से उसको दिखता नहीं था। तो वो वापस आया, वो व्यक्ति ऑलरेडी डिले हो रहे थे फ्लाइट के लिए, और वापस आया और आकर उसने देखा कि वो धीरे धीरे अपना सामान बटोर रहा है। उसने उसको सामान को इकट्ठा करने में मदद की, और मदद करने के बाद उसके उसमें कुछ पैसे डाले और वो आगे बढ़ा एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन तब तक उसकी फ्लाइट जा चुकी थी। तो व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस स्मॉल इंसिडेंट, ये हमारी रोजमर्रा की बातें हैं जो डेली लाइफ में आती हैं। व्हाट डू वी नीड टुडे, इस प्रकार का एटीट्यूड, आज अपने स्वार्थ को ना देख के हम जग हित को देखें, हम समाज के हित को देखें, वो बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो हमारी सरकार आज करना भी चाहती है, और ब्रह्मा कुमारीज में आप देखते भी हैं, हमारा एक ध्यान, क्योंकि वी आर ऑल ट्रैवलर्स, वी आर ऑल टूरिस्ट, हम इस संसार में आए यात्री बनकर आए हैं, तो हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जहां भी हम जाएं, वहां लोग क्या करें, हमारा इंतजार करें। क्यों? और जहां हम जाएं लोग हमें प्यार करें, और जहां से हम जाएं वहां लोग हमें प्यार करें। उसके लिए दो तीन बातें जीवन में याद रखनी बहुत जरूरी है। एक जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्वच्छता। दिस इज द नीड ऑफ द कंट्री, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर हर व्यक्ति इस बात पर ध्यान देगा कि मुझे स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो मेन ध्येय है वो हमारा जरूर पूरा होगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें न केवल आध्यात्म या अपने अंदर की यात्रा सिखाती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें स्वच्छता भी सिखाती है, तन की स्वच्छता और मन की स्वच्छता और स्थान की स्वच्छता। ये तीनों ही स्वच्छताएं बहुत जरूरी हैं। अगर मन की स्वच्छता आ जाएगी तो तन की और स्थान की स्वच्छता हम अपने आप रखना सीख जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका एक बार फिर से बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति।
हम सबका स्वागत करने वाली कमलेश दीदी जी का भी हम सब बहुत दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने कितनी सुंदर बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं। हम सब यहाँ टूरिस्ट हैं। वैसे भी कहा ही जाता है कि इस संसार में हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो जब तक हैं तब तक इसका आनंद लें, लेकिन साथ ही उस सत्य को भी जानने का प्रयास अवश्य करें, जिस सत्य को जानकर ये जीवन सचमुच आनंदित हो जाता है। और ये कहा भी जाता है, जैसे दीदी कह रही थी, किसी के आने से खुशी होती है और किसी के जाने से खुशी होती है। तो हम अपने जीवन को ऐसा बना लें कि हम जहां भी जाएं सबको खुशी प्राप्त हो और सब हमारा इंतजार करते रहें। अब हम सब यहां क्यों हैं? हम अपना वक्त निकाल कर यहां आए हैं 4 दिन 5 दिन के लिए। क्यों हैं हम सब यहां? इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? हम यहां क्या छोड़कर और यहां से क्या लेकर जा सकते हैं? ये परिसर क्या है, स्थान क्या है? इन सब पे प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजयोगिनी मीरा दीदी जी को, जो कि शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग की वाइस चेयरपर्सन है। मेंबर हैं आप एडवाइजरी कमेटी की BSESMG हॉस्पिटल मुंबई की, साथ ही आप ट्रस्टी हैं रुधीबाई वाटुमल ट्रस्ट और विमेन्स मूवमेंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, टाइम्स फाउंडेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की। आप पिछले 55 वर्षों से इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही हैं। सांताक्रूज सब जोन की आप निदेशिका हैं। आपके लिए मैं यही कहूंगा कि सागर ने लहरें उछाली तो उससे निकली मोती हैं आप। खुदा जिसमें खुशबू भरे वो महकती रजनीगंधा हैं आप। मन का मैल धोने वाली जीवंत बहती गंगा हैं आप। शायद सबको पता नहीं, भगवान के नैनों की हीरा हैं आप। जीवन को प्रभु अर्पण कर देने वाली सच्ची सच्ची मीरा हैं आप, सच्ची सच्ची मीरा हैं आप आदरणीय मीरा दीदी जी।
ओम शांति। सर्व शक्तिमान आनंद के सागर, शांति के सागर, परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, यहां पर मंच पर उपस्थित आदरणीय भ्राता जी के चुक्याल जी, आदरणीय भ्राता शंकर नारायण स्वामी जी, आदरणीय भ्राता डॉक्टर प्रताप भाई, आदरणीय भ्राता राजू भाई, आदरणीय भ्राता रुपेश भाई, कमलेश बहन और आप सभी भाई और बहनों जो भारत के अलग अलग स्थान से, अलग अलग कोने से आए हुए हैं डेलीगेट्स, चाहे शिपिंग के हैं, चाहे टूरिज्म के, चाहे एयरलाइंस के, एविएशन के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है बहुत सुंदर है, स्पिरिचुअलिटी का रोल क्या शिपिंग एविएशन और टूरिज्म में। स्पिरिचुअलिटी का रोल बहुत सुंदर है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता की कमी के कारण, आध्यात्मिकता के अभाव के कारण बहुत सारी बातों में लोग स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, जिसमें शिपिंग एविएशन और टूरिज्म सेक्टर के भी हैं। यह सेक्टर एक ऐसा है जिनमें दिन रात सेवा में वो तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये जो सेवाएं हैं वो दिन रात चलती हैं और ग्राहक को, लोगों को सुख और सुविधाएं देने में काफी समय इनका जाता है जो इसमें कार्यकर्ताएं हैं, और वो भी कोई भी समय होता है, कभी सुबह, कभी दूसरी शिफ्ट, कभी रात की शिफ्ट। तो उसके कारण वो दबाव में भी आते हैं, टेंशन में भी आते हैं। ऐसे भी होता है कि बहुत ही थोड़े समय के अंदर कोई भी कीमत से प्राप्ति बहुत करना चाहते हैं, और उसके कारण भी एक आंतरिक शक्तियां जो है हमारी, वो शक्तियां बहुत ही क्षीण होती जा रही है, और जब हमारी शक्तियां क्षीण होती जाती हैं तो उस समय फिर से दबाव और टेंशन और स्ट्रेस उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। कभी कभी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन भी है ये सेक्टर में। कभी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसका सामना करना पड़ता है, तो ऐसे समय में हमें आंतरिक शक्तियां की आवश्यकता ज्यादा होती है। मैं आपको दो इंसिडेंट सुनाती हूं। आज से 2 साल पहले मुंबई से गोवा एक फ्लाइट जा रही थी। अभी उड़ान भरा नहीं था, उसके पहले जो पायलट थे उन्होंने को पायलट को कहा, वैसे दोनों ही सीनियर ही थे उस एयरलाइंस में, तो पायलट ने को पायलट को कहा कि ये फ्लाइट में पैसेंजर कितने हैं, उनको इन्फॉर्मेशन सारी लेनी होती है रजिस्टर में, वो रजिस्टर से पूछते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि वजन इसमें कितना है, सामान का भी वजन कितना है। तो 2-3 सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछा और पूछते समय उन्होंने ये कहा, जो को पायलट थे उन्होंने अंकल कहा कि अंकल हाउ मेनी पैसेंजर्स इन दिस फ्लाइट। तो जैसे ही उन्होंने अंकल शब्द कहा तो को पायलट जो थे वो बहुत बिगड़ गए, हाउ डेयर यू टू टेल मी अंकल। और इतनी दोनों की कहा सुनी हो गई, इतना हो गया कि मैनेजमेंट ने कहा कि ये फ्लाइट में आप दोनों नहीं जाएंगे, और उस फ्लाइट में उस समय उड़ान दोनों ने नहीं भरी, दोनों को वापस बुला लिया, तो फ्लाइट बहुत लेट हो गई। दूसरा केस सुनाती हूं, आप सभी को शायद पता होगा, 1 जनवरी की बात है, 27 डेज पहले की ही, लंदन से मुंबई फ्लाइट आ रही थी। और उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ, को पायलट ने पायलट लेडी पायलट को तमाचा मारा और वो उड़ान भरी हुई थी, और उस समय दोनों ही कॉकपिट से बाहर आ गए। पहले वो लेडी पायलट बाहर आ गई, फिर को पायलट उसको वापस अंदर बुलाने के लिए बाहर आ गए, ऐसे करके 2 बार हो गया। आप सोचिए कि पैसेंजर्स की क्या हालत होंगी, उस समय मानसिक अवस्था क्या होंगी। मैनेजमेंट ने तो डिसाइड कर ही लिया उस समय उनको सस्पेंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, डीजीसीए जो हैं भारत सरकार उन्होंने भी उनको लाइसेंस कैंसिल के लिए उन्होंने भी सोच लिया उसी समय। तो कहने का तात्पर्य है कि कितना बड़ा नुकसान उनको स्वयं को भी हुआ और जो पैसेंजर थे उनको भी हुआ। तो मुझे उस समय जब मैं पढ़ रही थी ये न्यूज, तो एक मन में विचार आया कि अगर यही व्यक्ति आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल होता, आध्यात्मिक होता ये व्यक्ति, तो कभी ऐसे नहीं करते थे। क्योंकि आध्यात्मिकता हमें शिक्षा देती है सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, स्ट्रांग हमारा विल पावर के लिए, और अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैच्योरिटी हमें देती है। जहां मैच्योरिटी होती है वहां इस प्रकार से नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी सारी जवाबदारियां बहुत अच्छी तरह से मैच्योरिटी से वो निभाते हैं, और कोई भी प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को फ्री रखते हैं। और जब स्वयं अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से फ्री रखते हैं तो उस समय बहुत पीसफुल माइंड को रेस्ट मिल जाता, माइंड पीसफुल हो जाता है। और जब माइंड पीसफुल होता है तो कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाती है, आप सभी को अच्छी तरह से ये जानकारी है ही। तो ऐसे समय में आध्यात्मिकता बहुत 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 उपयोगी साबित होती है, और आध्यात्मिकता से हमेशा हमारे जीवन के अंदर लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। इसीलिए भी आध्यात्मिकता का रोल बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उस समय सकारात्मक चिंतन होता है और एक दूसरों की भावना को समझ लेते हैं, और जब एक दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं तो वो जो कार्य है वो बहुत सुचारू रूप से हो जाता है, उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आता, कार्य सफल हो जाता है। और जब बाहर का ऑब्स्टिकल होता है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बाहरी ऑब्स्टिकल भी तब होता है जब पहले इंटरनल हमारे ऑब्स्टिकल कुछ होता है, चाहे ईगो हो चाहे दूसरी कोई भी बात हो। क्रोध से मुक्त हो जाते हैं आध्यात्मिकता से, बात तो क्रोध की हो गई ना कि अंकल कहा और उनको गुस्सा आ गया, तो क्रोध से भी फ्री हो जाते हैं, इरिटेशन से फ्री हो जाते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यकता है। अभी अभी रिसेंटली 10 एयरपोर्ट जो है मेन एयरपोर्ट इंडिया के, उसमें क्रू मेंबर्स के लिए प्रोग्राम रखा था। मुंबई में भी ये प्रोग्राम हुआ था तो मैं गई हुई थी एयरपोर्ट के ऊपर, फुल डे ट्रेनिंग थी। और उसमें वो लोगों ने कहा, बातचीत हो रही थी हमारे उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि जब फ्लाइट पे जाते हैं और काफी घंटा या तो काफी दिन, एक दो दिन फैमिली से दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, तो वो थोड़ी नाराजगी, जो हेड थे उन्होंने सुनाया कि थोड़ी नाराजगी उनके मन में रहती है कि हम अपने फैमिली से दूर हैं। और यही बात मैंने शिप्स के जो कैप्टन हैं उनसे भी ये बात सुनी है कि जो भी शिप्स में होते हैं क्रू मेंबर्स, कोई 2 मास, कोई 4 मास, कोई 6 मास शिप के ऊपर होते हैं, तो अपने परिवार वालों से और अपने घर से दूर रहते हैं, उनको हमेशा चिंताएं रहती हैं कि हमारे परिवार में सब कुछ ठीक तो होगा, तबीयत तो ठीक होगी आदि आदि बहुत सी सारी बातों के लिए। कई ने तो ये भी कहा कि हमें डिप्रेशन आता है जब शिप पर जाते हैं, तो ऐसे समय में आध्यात्मिकता का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ने ये बात यहां पर सुनी कि कैसे हम अपने आप को परमात्मा से, परम सत्ता से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो जब हम अपने आप को उनसे कनेक्ट करते हैं तो उस समय शक्तियां तो मिलती ही मिलती हैं, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं, तो यहां भी बहुत उपयोगी है आध्यात्मिकता। मैं कहूंगी कि जैसे पंछी आसमान में, जैसे मछली पानी में, जैसे खुशबू पुष्पों में, ऐसे ही आध्यात्मिकता का रोल शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म में, ये तीनों ही सेक्टर में आध्यात्मिकता से तीनों सेक्टर में मूल्य, वैल्यूज वो भी जीवन में स्वीकार कर लेते हैं और मूल्यनिष्ठ जीवन बनाते हैं। एक व्यक्ति ने भगवान को कहा, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। तो वर्तमान समय की ये स्थिति है। टूरिज्म की बात कहूं, गवर्नमेंट ने 7 मंत्र दिए हैं टूरिज्म के लिए कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले तो देश की जो इकोनॉमी है वो और अच्छी हो जाए। बहुत फर्क पड़ता है टूरिज्म पर। एक फॉरेनर्स जब आते हैं यहां पर तो उसके पीछे 8 लोगों को जॉब मिलता है, एक फॉरेनर के पीछे, चाहे एरोप्लेन वाले हो, चाहे कैटरिंग वाले हो, चाहे कस्टम वाले हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में टैक्सी वाले हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे जहां फूड खाते हैं या और कोई बातों का शॉपिंग करते हैं, तो ऐसे देखा गया है कि 8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो गवर्नमेंट ने 7 मंत्र कहे हैं। 7 ही मंत्र स शब्द पर से हैं। पहला है स्वागत। कोई भी आते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत हम किसी का वार्मली कब करते हैं? जब हमारा उनके साथ प्रेम और स्नेह है। तो ये जो प्रेम और स्नेह है वो आत्मा का स्वरूप है। तो प्रेम और स्नेह को हमें कनेक्ट करना है किसके साथ? हमारी चेतना के साथ, हमारी आत्मा के साथ। दूसरा मंत्र है गवर्नमेंट का सूचना, अर्थात उनको, टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन देते हैं, माना नॉलेज देते हैं। तो नॉलेज का कनेक्शन भी आत्मा के साथ है। मैं आत्मा स्वयं क्या हूं? ज्ञान स्वरूप हूं। तीसरा स है उनको सुविधाएं देते हैं। जब सुविधा किसी को मिलती है तो सुख महसूस होता है। तो मैं आत्मा भी क्या हूं? यहां भी कनेक्शन है आत्मा के साथ कि मैं आत्मा क्या हूं? सुख स्वरूप हूं। कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो संरचना माना प्लानिंग करते हैं, कहां कहां उनको टूर करनी है, कहां कहां उनको जाना है, क्या क्या करना है। तो प्लानिंग कब होता है? प्लानिंग तब होता है जब हमारे मन में बहुत ही शांति हो। शांति से प्लानिंग किया जाता है। तो मैं आत्मा कौन हूं? कौन हूं मैं आत्मा? बोलिए, शांत स्वरूप हूं। सभी शांत हो गए? पांचवी बात, सहयोग उनको देते हैं। हमेशा सहयोग उनको दिया जाता है जिसके ऊपर हमें विश्वास होता है और जो ऑनेस्ट है। तो ये जो दो गुण हैं वो भी आत्मा के साथ ही कनेक्टेड हैं कि मैं आत्मा हूं। ये हमें क्या होना चाहिए? विश्वास। छठा है सुरक्षा, प्रोटेक्शन। मैं आत्मा भी शक्ति स्वरूप हूं। तो सुरक्षा और यहां पर क्या, आत्मा की क्वालिटी क्या, स्वरूप क्या, गुण क्या आत्मा का? कि मैं शक्ति स्वरूप हूं। और सातवां है स्वच्छता। मैं आत्मा भी प्योर हूं। प्योरिटी आत्मा का गुण है। जहां प्योरिटी है वहां सुख शांति है। तो प्योरिटी सुख शांति की जननी कहा जाता, माता कहा जाता। तो टूर एक कॉमोडिटी है, टूरिस्ट ग्राहक है, और ये विश्व टूर का सुपरमार्केट है, और हर व्यक्ति जन्म से ही टूरिस्ट है। तो हम सब टूरिस्ट है, और वो भी जन्म से। पर हमारा जीवन एक यात्रा है। कहा गया यद ध्यायति तद भवति। जो हम सोचते हैं वो होता है। तो मैं कहूंगी, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो आध्यात्मिकता ये तीनों ही सेक्टर में बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिकता आएगी मेडिटेशन के द्वारा या इंटरनल जर्नी के द्वारा। कहा गया है ऑल ऑफ अस वी लव टू ट्रैवल आउटसाइड, बट व्हेन वी ट्रैवल आउटसाइड वी एक्सपेंस अवर एनर्जी, बट व्हेन वी ट्रैवल इनसाइड वी गेट अवर एनर्जी, वी रिकूप अवर एनर्जी। तो इसीलिए भी आध्यात्मिकता का रोल बहुत सुंदर रोल है। ओम शांति। डॉक्टर निर्मला दीदी जो शिपिंग एविएशन और टूरिज्म विंग के चेयरपर्सन है, तो वर्तमान समय ऑस्ट्रेलिया में है। तो डॉक्टर निर्मला दीदी ने ईमेल भेजा है, मैसेज भेजा है, वो मैं पढ़ती हूँ। शॉर्ट मैसेज है, दीदी जो है वो यहाँ पर ज्ञान सरोवर एकेडमी है, उनके दीदी डायरेक्टर हैं और एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सिंगापुर, मलेशिया आदि आदि, श्रीलंका, चाइना, बहुत सारे, जापान, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश हैं, दीदी उनके डायरेक्टर हैं। डियर मीरा, ग्रीटिंग ऑफ पीस, ग्रीटिंग ऑफ लव फ्रॉम डॉक्टर निर्मला दीदी। आई एम नाउ इन ब्लू माउंटेन इन बीके सोल्स विथ ऑल बीके सोल्स फ्रॉम सिडनी, कैनबरा, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट। अबाउट 200 आर हियर फॉर दिस वीकेंड। मैसेज, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड गेस्ट हु हैव कम टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन ट्रेवल एंड टूरिज्म, वेलकम एंड एंजॉय दिस कॉन्फ्रेंस एंड लर्न हाउ टू रिलैक्स एंड हाउ टू एंजॉय लाइफ नॉट ओनली इन अर्निंग मनी बट ऑल्सो इन पेरिशेबल हैप्पीनेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी। Present life is full of challenges and obstacles. With the help of spirituality, you will earn a lot of material and spiritual wealth and become ever healthy and ever happy. In godly service, BK Dr. Nirmala, Chairperson. Didi ji ka ye message tha, wing ke prati aur aap sabhi ke prati.
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने आध्यात्म की ओर चलने के लिए हम सबको प्रेरित किया, उसकी महत्ता हम सबके सम्मुख रखी। और सदियों से हम ईश्वर से ये कामना करते रहे हैं मित्रों कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। अध्यात्म हमें वही पथ प्रदर्शित करता है। और यदि आप सारे वेद शास्त्रों का सार देखें तो एक ही शब्द निकल के आता है, एक वाक्य निकल के आता है, नो थाइसेल्फ। अपने आप को जब हम जानते हैं, जिसकी बात दीदी कह रही थी कि बाहर यात्रा करते हैं तो एनर्जी बहुत नष्ट होती है, लेकिन जब भीतर की यात्रा होती है एनर्जी बढ़ती जाती है, हम अपने आप को संपन्न महसूस करने लगते हैं, संसार को बहुत कुछ देने लगते हैं। और ये 3-4 दिनों की यात्रा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भरपूर करेगी और एक नए जहां में आप होंगे, एक नई रोशनी और एक नया प्रकाश लेकर के आप यहां से जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अध्यात्म के इस महत्ता को, न केवल ट्रेवल्स में, टूरिज्म में, लेकिन जीवन में इसका क्या महत्व है, हमारे स्वास्थ्य से ये कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब जीवन में हैं, अपने क्षेत्र में हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन स्वास्थ्य हम सबके लिए सर्वोपरि है। तो हमारे बीच सौभाग्य से डॉक्टर प्रताप मेधा जी हैं। डॉक्टर प्रताप मेधा जी मेडिकल डायरेक्टर और ट्रस्टी हैं जेवा टूमल ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माउंट आबू के, साथ ही ट्रॉमा सेंटर, आई केयर सेंटर, नर्सिंग स्कूल और कॉलेज जो आबू रोड में है उसके भी आप डायरेक्टर हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर प्रताप मेधा जी से, हम करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें कि वो अपनी शुभकामनाएं भी हमें प्रदान करें और साथ ही स्वास्थ्य के टिप्स के।
ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राजयोगिनी मीरा बहन, हमारे आमंत्रित मेहमान राजू भाई, कमलेश बहन और आप सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, बहुत उदाहरणों से बताया हमें कि आध्यात्मिकता क्या है। कभी कभी हमें लगता है कि शायद आध्यात्मिकता कठिन शब्द है। वैसे भी जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो लोगों को या तो पहाड़ याद आते हैं, या नदियों के किनारे याद आते हैं, या एकांत में रहने के लिए गुफाएं याद आती हैं। शायद हम ये समझते थे कि जीवन और आध्यात्मिकता दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो मैंने जाना कि आध्यात्मिकता एक ऐसा सत्य है जिसका सही मजा उसको जीने में है। ज्ञान कितना भी हो लेकिन ज्ञान जब हम जीते हैं और वास्तविकता में जो बात हमने गहराई से समझी है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, हम इस शिक्षा में विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी जब ज्ञान को यूज करता है वो अपने आप को अप्रेंटिस समझता है, तभी उसकी लगन बढ़ती है। महाभारत की भी कहानी बताते हैं कि जब युधिष्ठिर और सभी पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ते थे तो एक दिन का पाठ था कि सत्य क्या है, सत्य बोलना चाहिए। तो सबसे गुरुजी ने जब दूसरे दिन पूछा तो सबने कहा कि हमने पाठ पढ़ लिया है, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मुझे अभी उसके बारे में ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, लेकिन युधिष्ठिर ने यही कहा कि मुझे सत्य अभी समझ में नहीं आया। लेकिन सात दिन के बाद उसने कहा कि नहीं, अब मैंने सत्य को समझा है। तो जैसे ट्रुथ जो है, जो सत्य है, वो जीवन की सच्चाई है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई है सत्यता में जीवन जीना। तो आध्यात्मिकता के ये जो महान सत्य हम सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करना, आत्मिक स्थिति में रहकर व्यवसाय करना, व्यवहार करना, जीवन जीना, वो हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सीखा। कॉन्शियसनेस में जब परिवर्तन आता है तभी हमारे जीवन में सोच में परिवर्तन आता है। एक चित्र था हमारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, उसमें उस चित्र में दो भाग दिखाए हुए थे। एक भाई था जिसका परिवार बड़ा था, तो उस भाई ने कहा कि मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, अगर बेईमानी नहीं करूंगा तो जीवन कैसे चलेगा। और दूसरे उसी का ही था, दूसरे ने कहा कि भाई मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, मुझे ईमानदारी से चलना है। तो सोच का ही फर्क है। हम यहां जो परिवर्तन करते हैं वो सोच की करते हैं। ऐसे ही हम कर्म दर्शन की बात को समझते हैं, हम ये मानते हैं कि हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सबसे प्रेम से चलना चाहिए, लेकिन अनायास कितनी बार हो जाता है, जैसे हमने उदाहरण भी सुने। जो कोहेरेंस चाहिए ज्ञान में और कर्म में, कोहेरेंस जो चाहिए उससे ही कर्मिक फिलॉसफी का समझ में आता है। एक बार मैंने पढ़ा था कि अगर आप अपने किसी मित्र को बरसों के बाद किसी कोने में मिलते हैं तो वो चांस नहीं है, वो अनायास नहीं है, लेकिन वो भी कर्मों से ही कनेक्टेड है। तो आध्यात्मिकता से हम कर्म दर्शन को समझते हैं। हम शॉर्ट साइटेड नहीं होते लेकिन फार साइटेड बनते हैं, दूरदर्शिता आती है। हम हर कार्य को समझकर उसके परिणाम को जानकर करते हैं, वो आध्यात्मिकता है। परमात्मा के बारे में हमारी अनेक मान्यताएं हैं, हम उनको याद करते हैं, भक्ति में गाते भी हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो हम परमात्मा के साथ अपना समीप संबंध जोड़ते हैं, हम गाते हैं कि वो माता पिता बंधु सखा सहायक सब हैं, लेकिन संबंधों की क्लोजनेस कहाँ है, वो क्लोजनेस कब आती है। हम कहते हैं हमें सत्संग करना चाहिए, संग का रंग होता है, लेकिन परमात्मा को हम कितनी देर अपना साथी बनाकर चलते हैं। हम कहते हैं उनके साथ हमारे सर्व संबंध है, लेकिन शायद वो केवल एक लिप सर्विस है। लेकिन वास्तविकता में जब क्लोजनेस होती है, जिस बात को हम गहराई से जान लेते हैं, तो हम हमारे में वो अवेकनिंग आती है, अवेयरनेस आती है, और उस अवेयरनेस में रहकर हम कर्म करते हैं। कुछ भी चीज अछूती नहीं रहती। आध्यात्मिकता से जीवन में स्वतः ही एक अनुशासन आ जाता है, उसमें मेहनत नहीं होती। जो चीज हम प्यार से करते हैं, लगन से करते हैं, उसमें करने में मेहनत किस बात की। हम ये जान लेते हैं कि परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, तो हम ये भी पहचानते हैं कि परमात्मा की संतान बनने में हमारी जिम्मेवारी कितनी है। हम ईश्वरीय संतान हैं, एक केवल शब्द नहीं रह जाता, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं सभी के प्रति परोपकार की दृष्टि रखूंगा, सभी के प्रति मेरा आत्मिक स्नेह होगा, सभी के कल्याण की बात सोचूंगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक अवेकनिंग आ जाती है। तो आध्यात्मिकता देन इट परमिएट्स अवर लाइफ, जीवन के हर अंग में जाती है, हर सेल में जाती है। अभी तक मनोवैज्ञानिक इस बात को अध्ययन करते रहे कि स्ट्रेस का जीवन में क्या नुकसान होता है, जैसे हमने उदाहरण भी सुनी, गुस्से से क्या होता है, लेकिन अभी मनोवैज्ञानिक ये स्टडी कर रहे हैं कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप खुश रहते हैं, अगर आपके जीवन में संतोष है, आप दूसरों की मदद करते हैं, तो तब जीवन में क्या परिवर्तन आता है। रुपेश भाई कह रहे थे कि स्वास्थ्य का क्या कनेक्शन है। अब देखिए, ये सीड और सॉयल का कनेक्शन है। हम ये जानते हैं कि आज रोग बहुत हो गए हैं, लेकिन सभी तो रोग से प्रभावित नहीं होते। हर एक की अपनी एक रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसको हम अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो हम कैसे उठते हैं, क्या भोजन करते हैं, कितने एक्टिव हैं, हमारी नींद कैसी, ये छोटी छोटी बातें भी हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। हमारा भोजन कैसे संतुलित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, हमारे जीवन में आलस्य नहीं हो। तो ये सब बातें कुछ भी अछूती नहीं रहती, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब एक नई साइंस है जिसको हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं, कि हमारी साइकी हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और उससे हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में डॉर्मेंट पड़ी रह सकती है सालों साल तक, लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेस से प्रभावित होते हैं, जैसे ही हम अपने भोजन को नेग्लेक्ट करते हैं, वो बीमारी उभर कर सामने आ जाती है। ऐसे ही अगर आप रोग से ग्रसित हैं, तो रोग से मुक्त होने के लिए भी मेहनत हमें करनी पड़ती है। यदि हम अपने आप को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं अपनी रिकवरी में, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो रिकवरी भी फास्टर होती है। कितने ही योगी आत्माओं को हमने देखा है, ये नहीं है कि रोग नहीं आता, लेकिन रोग आता है लेकिन उनको प्रभावित नहीं करता है। दर्द होता है, लेकिन दर्द से सफर करना, दर्द से कष्ट उठाना, वो हमारी अपनी चॉइस है। तो जीवन में हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। हम अपने जीवन के हर बात को इस गहराई से समझे कि हम अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने प्रति हमारा अपना उत्तरदायित्व है, कोई भी हमें क्रोधित नहीं कर सकता, कोई भी हमें सत मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। ये हमारी अपनी वीकनेसेस हैं, ये हमारे अपने संस्कार हैं, और उसको परिवर्तन करने का आधार है आध्यात्मिकता, और आध्यात्मिकता को व्यवहारिक रूप में लाने का साधन है राजयोग। तो योगी जीवन से हम जो अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, तो उससे न केवल हम सुखी बनते हैं लेकिन हमारा परिवार सुखी बनता है, हमारे आस पड़ोस के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, तो हम समाज के निर्माण में भी सहयोगी बनते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में हम लोग ये समझते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक हमने स्वयं को परिवर्तन नहीं किया तो हम बाहर के परिवर्तन की इच्छा नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि शरीर एक रथ है, इस शरीर को चलाने वाली जो रथी आत्मा है उसमें एक अनंत शक्ति है, अनंत पोटेंशियल है। तो जब आध्यात्मिकता के आधार पे हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं तो हम निमित्त बनते हैं बहुत बड़े अमूल परिवर्तन के लिए। तो हम सब अगर आज ये संकल्प लें कि हमें अपनी आत्मा को सशक्त बनाना है, सेल्फ मास्टरी जिसे कहते हैं, आत्म अनुशासन जो कहते हैं, उसके आधार पर हम किसी भी व्यवसाय में हों, किसी भी कार्य क्षेत्र में हों, तो उसमें हम शक्तिशाली भी बनेंगे, प्रभावशाली भी बनेंगे। तो हम सब इस बात को गहराई से समझे कि ये परिवर्तन का समय है और हम ही परिवर्तन करने के निमित्त हैं। ओम शांति।